लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवनी पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओ, इन दिनों हम छोटा नागपुर के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवनी एवं मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से छोटा नागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। साथ ही समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठ पाए। फादर लेबन्स की इस विरासत को हमारे समाज में बनाए रखना आज भी अत्यंत लाभदायक होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में हम छोटानागपुर में आदिवासी लोगों की दयनीय स्थिति और मिशनरियों के अथक प्रयास पर पुनः प्रकाश डालेंगे। उन दिनों जमींदारों को बहुत अधिक बोलबाला था। वे आदिवासियों के साथ बड़ी क्रूरता का बर्ताव करते थे, किंतु फादर लेबन्स ने बड़े साहस के साथ उन्हें जमींदारों के चंगुल से निकाला। फल यह हुआ कि लोग स्वेच्छा से ख्रिस्त धर्म अपनाने लगे। दिघिया से करीब 22 मील की दूरी पर पदारिया गांव था। यहां करीब 40 से 45 परिवार थे, पर एक भी ख्रिस्त नहीं था। उस गांव का दौरा किसी फादर ने अभी तक नहीं किया था। पदारिया में 3 जमींदार थे जो बड़े सूदखोर और अत्याचारी थे। वे बिना मजदूरी लोगों को अपने खेतों पर काम कराते थे, अत्यधिक लगान लेते थे और भुगतान का कोई रसीद भी नहीं देते थे। वे उन लोगों को पीटते थे जो शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते थे। जनवरी में पदारिया के लोगों ने फादर लेबन्स एवं उनके कार्यों के बारे सुना। उन्होंने यह भी सुना कि जहां कहीं ख्रिस्ते लोग हैं, जमींदारों एवं ठेकेदारों की निरंकुशता का अंत हो रहा है। पदारिया गांव के लोग ख्रिस्ते बनने के लिए इच्छुक होने लगे। गांव का मुखिया बुद्धू, जो एक लोहार था, उसने दूसरे गांव के लोगों की सहायता से फादर लेबन्स को अपने गांव बुलाया। फादर लेबन्स के आदेश पर एक प्रचारक पदारिया गांव के लोगों से मिलने गया और कुछ परिवारों ने उनसे धर्म शिक्षा की मांग की। इस बात को जानकर तीनों जमींदार बहुत क्रोध हो गए और लोगों को डराने धमकाने लगे। उन्होंने गांव के मुखिया बुद्धू, फादर लेबन्स के प्रचारक एवं स्कूल शिक्षक पर सिसाई के पास हमला कर दिया। उन तीनों को बहुत जोरों से पीटा गया, पर प्रचारक किसी तरह भागने में सफल रहा, जिसने घटना की जानकारी दी। फादर लेबन्स ने फादर हेगेनबेक, जिसके कार्य क्षेत्र में यह स्थान आता था, उन्हें घटना स्थान पर जाकर स्थिति का अवलोकन करने का आदेश दिया। फादर हेगेनबेक तुरंत पदारिया गांव गए, जहां उन्होंने लोगों को भयभीत पाया। उन्होंने लोगों को ढाढ़स बंधाया और आश्वासन दिया तथा कहा कि वे दुनिया के किसी ठेकेदार से नहीं डरते हैं। तब परिवारों के प्रमुख उनसे मिलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने बतलाया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए वे थाना गए थे, किंतु जमादार अनुपस्थित था और मुंशी ठेकेदार के साथ मिला हुआ था, इसलिए कुछ नहीं किया। तकलीफ बताने के बाद ख्रिस्ते बनने की दृढ़ इच्छा से बुद्धू की अगुवाई में परिवार के पिताओं ने चट्टाई पर बैठकर अपनी चुंदी काटी। फादर हेगनबेक और प्रचारक सिसाय स्थित पुलिस स्टेशन गए, जहां जमादार ने उनका खुलकर स्वागत किया। वे केस दर्ज कराना चाहते थे, किंतु भाषा अच्छी तरह नहीं बोल पाने के कारण केस दर्ज नहीं करा पाए। अतः उन्होंने फादर लेबन से परामर्श लेने हेतु तोरपा जाने का निश्चय किया, जो वहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। फादर हेगनबेक की तोरपा यात्रा यादगार पूर्ण रही, जैसा कि उन्होंने बतलाया है। अगले दिन 18 फरवरी को जब मैं तोरपा के लिए रवाना होने लगा, तब 10 लोगों का एक प्रतिनिधि दल करुंदाचार गांव से मिलने आया। यह गांव पदारिया से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर था। गांव वालों ने आग्रह किया था कि यदि संभव हो तो मैं उनके गांव आऊं तथा ठेकेदारों के शोषण से उन्हें बचाऊं, और वे ख्रिस्ते बनना चाहते थे। क्योंकि उनका गांव तोरपा जाने के रास्ते पर ही था, फादर ने उनके पास रुकते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वे उनके गांव पहुंचे, ऐसा लगा कि मानो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। उनका स्वागत करते हुए उन्हें एक घर में लिया गया और बड़े सम्मान के साथ उनका अतिथि सत्कार किया गया। गांव में सभी लोग गैर ख्रिस्ते थे। कोई भी फादर लेबन्स के बारे नहीं जानता था, क्योंकि वे कभी वहां नहीं गए थे। यह एक खड़िया गांव था। फादर हेगनबेक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, किंतु चूंकि वे तोरपा जाने के रास्ते पर थे, लौटते समय उनकी मदद करने का वचन दिया। उन्होंने बतलाया कि उस समय फादर लेबन्स भी उनके साथ होंगे, जो उनके सभी मामलों को पूरी तरह सुलझा सकते हैं। लोग यह सुनकर इतने खुश हुए कि गांव के मुखिया ने तुरंत अपनी चुंदी काट ली और धर्म शिक्षा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। फादर ने रात वहीं बिताई और अगली सुबह 19 फरवरी को पौत्र मिसा अर्पित किया। फादर तौर पर जाने के लिए आगे बढ़ गए। दूसरी बेला वे जटा लोया पहुंचे, जो तोरपा से 16 मील की दूरी पर था। वहां फादर लेबन्स ने पहले ही कई लोगों को ख्रिस्त धर्म में प्रवेश दिलाया था। वहां फादर हेगनबेक ने हर एक ख्रिस्त परिवार का दौरा किया। लोगों ने बड़े गर्व के साथ फादर लेबन्स से प्राप्त पौत्र क्रूस एवं तस्वीरों को दिखाया। सभी लोगों के गले में रोजरी माला थी और उन्होंने यीशु की बड़ाई कहकर उनका अभिवादन किया। यह रविवार का दिन था, अतः गांव के प्रधान ने प्रार्थना सभा करने का आग्रह किया। घंटी बजी और सभी ख्रिस्ते प्रधान के घर में जमा हुए। सबने मिलकर प्रार्थना की तथा फादर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद माताएं अपने बच्चों के साथ आईं और अपने बच्चों पर विशेष आशीष की याचना की। एक ख्रिस्ते के घर के बरामदे में रात बिताने के बाद फादर दूसरे दिन सुबह फिर तोरपा के लिए बढ़े। तोरपा पहुंचने पर उन्होंने फादर लेबन्स एवं फादर वान सेवेरन को घर में ही पाया। श्रोताओ, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी एवं मिशन पर एक चर्चा सुन रहे थे।
नीले आसमान के पार जाएंगे। वादा भी पूरा होगा, देखेंगे सारा जहां।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक शगुन, लेखिका है अंतरा करवड़े। श्रोताओं, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी स्त्री भ्रूण हत्या हमारे समाज का कड़वा सच है। कुछ लोग मानते हैं कि वंश चलाने के लिए लड़के का होना आवश्यक है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बेटी तो पराया धन है, बुढ़ापे में बेटा ही देखेगा। कुछ दंपति ऐसा भी सोचते हैं कि संतान तो ईश्वर की सबसे महान और अनमोल देन है, बेटा हो या बेटी उससे अच्छे संस्कार देना, एक अच्छा इंसान बनाना ही माता पिता का परम कर्तव्य है। वे लड़का और लड़की दोनों को ही पूरी शिक्षा दिलाते और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराते हैं। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि परिवार में अब पहले के अनुपात में कम बच्चे पैदा होते हैं। बेटा और बेटी दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। बुढ़ापे का सहारा तो बेटा या बेटी दोनों ही बन सकते हैं। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं अंतरा करवड़े का लिखा नाटक शगुन।
अरे वाह, बड़ी लाल नीली साड़ियों में मटक रही हैं इस घर की औरतें। अरे शादी ना हुई, मजे करने का बहाना हो गया है। अरे कोई है भी इस बुढ़िया के हाल चाल पूछने वाला? सब अपने में ही मगन रहते हैं।
आ गई बुआ, सफर में परेशानी तो नहीं हुई?
अरे परेशानी तो उन्हें होगी जिनके घर तुम जैसी बेटियां मुंह दलती बैठी हो। हम तो ठाट से ये चले आ रहे हैं। अरे तुम्हारी अम्मा दिखाई नहीं देती?
बुआ वो माँ अभी पड़ोस वाली आंटी के साथ बाजार गई है, आती ही होगी। अकेले पानी ना, चाय लेंगी ना?
अरे तनिक बैठ कर सांस लेने देगी या चाय काफी मुंह में भरने की जल्दी मचाएगी। जल्दी से बुआ के हाथ में कप पकड़ा दो तो बुढ़िया का मुंह बंद हो जावे। चल छोड़, भैया कहाँ गया?
जी वो ऑफिस गए हैं, माँ आती ही होगी।
चल बना दे चाय मेरे लिए, और हाँ चीनी जरा अच्छी डालना।
जी जी अभी।
अच्छा जरा ये तो बता, दहेज में क्या जाने वाला है?
बुआ मेरा ससुराल पुराने ख्यालों का नहीं, उन्होंने कहा है कि दहेज में तो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो पापा ने जिद की कि हम लोगों में 21 शगुन की चीजें तो दहेज में जाती ही हैं।
ये ठीक किया भैया ने, वरना आजकल के लोग आज कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए और बाद में कहेंगे हमने आपकी बेटी को देने से मना थोड़ी ना किया था।
जी नहीं बुआ, उनका कहना है कि कुछ देना ही है तो बहू के साथ अच्छे विचारों और लेखकों की 21 किताबें दी जाए, बस यही दहेज चाहिए उन्हें।
जाने आजकल के लोगों को क्या होता जा रहा है, शगुन की 21 चीजों की बजाय किताबें। अरे एक बात बता, भैया ने घर वर अच्छे से देख लिया है ना?
कैसी बातें करती हो बुआ, आपको पापा पर भरोसा नहीं है क्या?
अरे ऐसी बात नहीं है, अब आज के जमाने में तो जो हो वो कम है।
सायली सायली जरा सामान उठा तो बेटा। आई माँ, माँ बुआ आई है। अरे दीदी चरण स्पर्श, कब आई? सफर में परेशानी तो नहीं हुई?
बस अभी चली आ रही हूँ। तुम सुनाओ, बेटी की शादी की खूब तैयारी कर रही हो सुना है, और ये सायली क्या कह रही है? तुमने समधियाने में कोई दहेज ना देने की बात मानकर 21 किताबें देने का सोचा? हद हो गई।
अब क्या कहें दीदी, इतने अच्छे लोग हैं कि क्या कहूँ आपसे। उन्हें तो हमारी सायली ही इतनी भा गई है कि बस कुमकुम कन्या पर ही राजी थे, लेकिन हमने कहा कि हमारे भी अरमान है बेटी को लेकर।
हाँ हाँ ठीक है, आगे एक और बैठी है मिताली, उसकी शादी में निकाल लेते अपने अरमान।
अच्छा बीरेन की बहू का क्या हुआ? आ गई मायके से?
वो तो ठीक है, आ ही जाएगी, आ जाएगी, कल आएगी। भैया नहीं दिखाई दे रहा?
आते ही होंगे थोड़ी देर बाद। दीदी बहू को ज्यादा तकलीफ तो नहीं है?
हमने तो सुना है कि पिछले 3 महीनों से घर नहीं लौटी वो। अरे तुम लोगों को क्या पड़ी है उससे? उसका मायका है, जब चाहे तब आए, जब चाहे तब जाए। तुम दोनों बेटियों के भाग पर बड़ी इतराती रहती हो। अब इन दोनों का ब्याह हो जाएगा ना, तब तुम्हारा कहाँ ठिकाना लगेगा वो मैं भी देखूंगी। हाँ
अरे दीदी आप तो बुरा मान गई, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था, वो तो बस यूं ही। वैसे भी मेरे लिए मेरी दोनों बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। बुआ आपका फोन आया है, बीरेन भैया है।
बीरेन? क्या क्या हो गया? अरे फोन कहाँ रखा है?
अंदर कमरे में है, इधर से जाइए।
हाँ हाँ जा रही हूँ, जाने क्या कहेगा अब ये।
मम्मी ये बुआ को लड़कियों से इतनी चिढ़ क्यों है? पुराने ख्यालों की है बेटा, उनका सोचना है कि लड़कियां सिर्फ बोझ होती हैं, शादी करके छुट्टी पाओ बस। लेकिन तू बुरा मत मान, मेरे लिए तो तुम दोनों ही लड़कों से भी बढ़कर हो।
हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, जाने कौन घड़ी में ये बेटा हुआ मुझे।
अरे दीदी क्या हुआ? बुआ क्या हुआ, आप आराम से बैठिए। क्या कहा बीरेन ने?
अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बहू बेटे से 1 मिनट को नहीं बनती। पिछले दिनों बहू को जरा सा डांट क्या दिया, वो तो मायके जाकर बैठ गई है, आने का नाम ही नहीं लेती। बीरेन का फोन था, कहता था अब इस घर में बहू रहेगी या मैं, और उसने तो फैसला भी कर लिया। मेरा सामान उसने वीणा के घर भिजवा दिया, अब मैं बेटी के घर रहूंगी।
देखिए दीदी जो भी हुआ वाकई बुरा हुआ, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई भला, आपने हमें कुछ भी नहीं बताया।
अरे मुझे लगा कि चाहे जो हो बेटे का घर है, इसमें मेरा हक तो है ही, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा।
बुआ वीना दीदी का फोन था, वे शाम को आपसे मिलने आ रही हैं।
अब तो मुझे बेटी का ही सहारा है, ये बीरेन भी बेटी क्यों ना हुआ।
दीदी अब तो कम से कम बेटियों को कम आंकना छोड़ दो, एक वो बेटा है जिसे आपने हमेशा अच्छा खिलाया पहनाया, और एक वीणा है जिसे न ढंग का खिलाया पिलाया ना ही परवरिश दी, क्योंकि वो लड़की है। अब आप ही बताइए कि सही समय पर आपके काम कौन आया।
वाकई वाकई मेरी भूल हो गई, मैंने वीणा के साथ कितना अन्याय किया, उसी का फल भुगत रही हूँ मैं।
बुआ छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन मैं और मिताली मिलकर हमारे मम्मी पापा को अच्छे से रखने के लिए तो बचत भी करने लगे हैं। बेटियों को भी माता पिता की फिक्र होती है, लेकिन आप उन्हें बेटों के समान प्रेम ही नहीं देंगे तो वे आगे कैसे बढ़ेंगी।
बिल्कुल सही कहा सायली तूने, अब तो जल्दी से मुझे तेरे दूल्हे को देखने की इच्छा है। कितना सुलझा हुआ परिवार है, भगवान करे तुम्हारे जैसी बेटियां भगवान हर घर में दे।
शगुन अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी, इसकी कलाकार थी अंतरा करवड़े। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।